राजते कीट कीटते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आन को पूजे आत्म काति हरते देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए जो गुरु को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभु पावे हर की सेवा सतगुरु पूजो कर कृपा पुतरावे परम भूले अज्ञानी अंधले परम परम भूल तोरावे निर्जीव पूजे मुड़ा सरेवे सब वीरति काल गवावे बिन नावे होर पूज न होई परम पुली लोकाई हर की पूजा दुर्लभ है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नाम पूज कराई
दुखी हो करके अपने शरीर की प्रतिपालना कर रहे हैं इसका भारी अर्थ है गुरु साहब इसका रूहानी अर्थ जो है ये अगे देंगे और पूरा उपदेश भी करेंगे सब तो पहला आज के दिहाड़े के मुतलक गुरु साहब उपदेश करेंगे आज का दिन असी किस करके जन्म लिया है और की कर रहे हैं इतिहास की कहता है जो रामचंद्र जी वनवास को लौटते अयोध्या अपने देश वापस आए तो रोशनी की थी, छोटे रूप यही है। और अभी देखना है कि असी की कारण राम कौन है और दीपावली केड़ी है, गुरु का उपदेश कर रहे हैं। आत्मा जो ये राम है, ये राम क्यों है? क्योंकि ये उस राम का अंश है जो परम चेतन अजय स्वरूप सचखंड का वहां अयोध्या नगरी केड़ी है, सचखंड है वनवास। रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास कटना पड़ा और 14 वर्या कटद्या कोई ज्यादा विलंब नहीं हो रहा। अभी जरा वनवास कट रहे 84 लाख जून का प्रबंध सदियां तो कर रहे हैं, सदियां तो आवागमन इसके फंसे हो रहा। ऐसा भयानक वनवास अभी कट रहे हैं और उसके बावजूद सानू होश नहीं है, अभी की कर रहे हैं। गुरु का उपदेश करते हैं, कहते ने बेटा जदों तू इस राम के नाल मिलकर इस आत्मा 84 लाख जामिया जो काट के इस आवागमन तो मुक्त करके सचखंड अपने देश अयोध्या को लौटेगा, उसने तेरी दीपावली मनाई जाएगी और उसे तेन रोशनी करने की कोई लोड़ नहीं पड़ेगी। ये दीपा के बातियां सब झूठिया ने, सदियां तो तू अंधकार दूर करने के लगा हुआ है। 3 युग हो गए हैं अभी इस अंधकार को दूर करन लगे हैं। हर साल सात का महीना है, आज का दिन इस बुखार का सब कुछ चरम सीमा है। आज तक ना ये बुखार उतरिया है इन्ना युगा चो ना और मेरा दूर हो गया। तो तेरी दीपावली केड़ी है जो तू 84 लाख जामिया चो इस राम नु इस आत्मा नु फड़ लेगा और सतपुरुष की गोद के भी वाता तेरा होएगा, ता ही तेरी दीपावली मनाई जाए। हूँ अभी ये देखना है कि अभी जो पूजा करते हैं वो की सोच के करते हैं। गुरु साहब देश करते हैं सियाणा कौन है, चतुर कौन है, जरा अपनी मंजिल नु मुख रख के फैसला करता है। साड़ी मंजिल केड़ी है? सचखंड है। 84 लाख जामिया तो इस आत्मा नु आजाद कराना है, ये साड़ी मंजिल है। और अभी वो कर्म करने ने जड़े की इस मंजिल की प्राप्ति भी सानू फायदा दे और उन्हें कर्मों को छड़ते जाना है जड़े की सानू 84 के भ्रमण भी पक्का कर दें। इसे अभी किसी अवतार या किसी होर ईश की निंदा या होर किरणा या ऐसे विचार मन के बीच लिया करके ये पाखंड नहीं दूंगा। अभी सिर्फ समझना है इस मजमून नूं कि जड़ा काम है जड़ा सानू उस मुकाम से नहीं पुजा सकता उन्हें अभी छड़ देना है, उसकी अभी पूजा नहीं करनी। और ऐसा हर काम अभी करना है जिसनों करन दे नाल सानू साड़ी मंजिल की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा का दिन है। अब यह देखना है कि क्या यह पूजा सानू साड़ी मंजिल के कोल ले जा सकती है। तब तक ठीक है, बहुत अच्छी गल है, करनी चाहिए है। अगर नहीं तो सानू छोड़ देना चाहिए। सर हम भगवान श्री रामचंद्र जी सर एक काल के अवतार हैं, तीनों गुणा के मालक हैं। 3 गुण कहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी परवरिश और उसकी विला, ये 3 गुणा के मालक हैं। हम विचार करने वाली गल है यार कि ये 3 गुणा ने सानू की लाभ दिता। सब तो पहला तो उस परम चेतन उस राम जो घट घट के भी रमिया होया उस तो सानू अलग कर दिता। इस रूह न 84 लाख पिजरों के कैद कर लिया, ये 3 गुणा का कमाल है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर मौजूद है। किस तरीके ना ऐसे धर्म करवा करके पहले स्वाद के जरिए फिर अभी ना भोगा के स्वादा के आदि हो गए और उतले निकले जामना दे प्रगण करन लग गए। उसके नाल ही इतने बात नहीं जीती उसके नाल ही अंदर और बाहर साढ़े दुश्मन लगाते दुश्मन केड़े ने बाहर के दुश्मन नोट कर लो मां बाप भैन भरा तिया पुत्र जमीन जायदाद होर धंधे जिन्या भी गंढा संसार दिया सानू लगिया हुई ने ये सारे साढ़े दुश्मन ने और चिराती के भ्रमण को भी सानू पक्का कर दे कर्म करवाते ने तो पक्का करी जा रहे सदियां तो अभी सौकत होती अंदर के दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोरी ईर्षा निंदा होर ऐसे कर्म हम सूक्ष्म रूप के बिच जिन्होंने करके असी सदियां तो इन्होंने जामिया के भी भ्रमण कर रहे हूँ फैसला तुम्हें करना साफ होंगे जी कि अभी इस भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए है या नहीं। अभी सारे के सारे दिवालिए घोषित किए हुए हैं दिवालिए किस तरीके ना गुरु साहब पेश करते हैं कहते बेटा नजर मार के देख तेरे को लपना की है ये शरीर जिसके उत्ते तू अहंकार करी बैठा है ये भी तेरा नहीं है ये जान भी तेरी नहीं है होर पदार्थ इस सृष्टि के भी जो भी तू हासिल करके बैठा है ये तेन देखने भी मिले ने देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंधर खाई खाए जुगा तो तू भिख मंगता आ रहा है तेन गुरु साहब भिख दे रहे ने और तू कर की रहा है तू दिवालिया घोषित है उसके बावजूद गुरु ने रहमत करके तेन एक दौलत दी है इस लोक के विनिमय एक्सचेंज का एक साधन है पैसा इस पैसे के जरिए ही इस साधन के जरिए अभी अपने जिंदगी के सारे कर्म कांड करते हैं उसे तरीके नाल रूहानियत का जो कर्म कांड है उसके भी गुरु साहब ने एक दौलत सानू बख्शी है उसने क्या है स्वासा की पूंजी और इस स्वासा की पूंजी नू असी खर्च किथे कर रहे हैं गुरु साहब ने तो सानू दिती अभी सारे जुआरी है जुआरिया कोशिश और जुआरिया कौन है वो अपनी माँ के अपने भैन के गहने भी चोरी करके लै जाता है उसके बाद जाकर के जुआ खेल चढ़ता है तो जुआ सदियां तो आगे आ रहे हैं फिर भी जुआ खेलने तो बाद नहीं आते फिर भी जुआ खेलते हैं उसे तरीके ये रूहानियत की पूंजी जो दौलत गुरु साहब ने साथा भी सानू बख्शी है ये खर्च करने वास्ते क्यों दिती सानू कि असी अपने और गुरु के बीच जो दूरी है उन्होंने खत्म कर सकीए गुरु के बीच लीन हो सकीए असी उस राम के बीच लीन हो सकीए जो घट घर के रमिया हो रहा असी ये पूंजी कितने खर्च कर रहे हैं क्योंकि जुआरी है ना कितने खर्च कर रहे हैं असी ऐसे कर्म कांडा के बीच खर्च कर रहे हैं कोई दीपावली के रूप में या होर लैन देन बाजार नजर मार के देख लो किन्ने लंबे लंबे हथ करके अभी लै रहे हैं और दे रहे हैं क्या जितया अभी लैन नहीं आवेंगे क्या लिता है अभी देन नहीं आवेंगे अभी कि भरा में फसे हुए हैं इस तो वाला कोई और जुआ भी है वो सदियां तो जुए तो हारते आ रहे हैं फिर भी अभी बाज नहीं आते जुआ खेडन से फिर भी अभी जुआ खेल रहे दिवालिए घोषित हाँ फिर भी अभी गद्दार हाँ अपने उस गुरु के उस साहूकार के क्योंकि उस शाह ने सानू पूंजी दिखी थी कमाई करने वास्ते कमाई कही थी नाम की उस प्रभु की उस राम की उसके भी लीन हो और उसकी दौलत कितने खर्च कर दी साल ने चरना चढ़ते चढ़ दी और अपनी आवागमन 84 लाख जोनिया का भ्रमण पता कर और सदियां तो अभी ये करते आ रहे अज के दिहाड़े का सब तो वाला उद्देश गुरु साहब ने जो सब सोचा है वो यही है कि अभी वो कर्म सारे छड़ देने ने जिसके नाल अभी आवागमन के भी पक्के होंगे हूँ राम जी के बाद अभी देखते हाँ कि सृष्टि बहुत सारी जड़ी है कोठियां भी पूंजी है कोठियां भी तेज पुराने सतगुरा भी तेज जरूरी है एक सीमा तक वो सीमा केड़ी है अगर अभी कोठी पढ़ा नहीं उसके उत्ते विचार नहीं करा तो अभी उसके अमल किए करेंगे तो भाव की होया कि अमल शरीर है पढ़ना सुनना उसके अंग है अभी सत्संग सुनते हैं पढ़ते हाँ पर की लाभ अगर उसका अमल नहीं किया। तो इन्हों की देख उसी सीमा तक जायज है और सानू लैनी चाहिए भी है, उसके बिना गुजारा भी नहीं है। कि अगर असी उसके उत्ते अमल करना है, अगर अमल नहीं करना सिर्फ बाहरी तौर से मत्था टेकना है, सत्संग जाना है, सुनना है, एक तनो सुनना दूए तनो कर देना है, कोई लाभ नहीं। जया आया या ना आया, जया पढ़िया या ना पढ़िया, जया सुनिया या ना सुनिया, उत्थे उत्थे ही रहे गोलू के बैल वतन सोचते रहे कि अभी वर्षा तो चलते आ रहे हैं, फिर गुड्डी पार कर ली है, अख खोल के वेख्या तो की सी जितो चले थी उत्थे ही खोल, उस तो अगे की है, फिर किसी पूजा करिए, मूर्तियां नहीं पूजना, मूर्तियां नहीं पूजना, राम नहीं पूजना, किसी पूजना ईश्वर संगत जी, ईश्वर में भी पूजन का की लाभ है। वो ईश्वर जो घट घट के रमिया होया है, जर्रे जर्रे दे असी उस तक पहुंच नहीं सकते, असी उन्हें जानते नहीं, सानू उसकी विधि नहीं पता भी किस तरीके उसको असी कुछ कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते। तो ईश्वर के बारे ध्यान करना और उसकी पूजा करना ये भी सिर्फ समय में बेदार करना, सिर्फ समय नष्ट करना, जिसमें जानते ही नहीं कि पूजा किमें करनी। फिर गुरु साहब उदाहरण देंगे, कहते बेटा ईश्वर का उदाहरण इस तरीके समझ, एक राजा है, इको लैन के फैसला है कि उस राज के सब कुछ उस राजा का दिता होया है और उस राजा के हुक्म बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, सारी गल ये आ जाती है। और तू कैदी है 84 लाख जूना के कर रहा है, बेशक इस वेले मनुखे जन्म लिया तो की होया है, तो तू कैदी ही हुक्म जामा है, बेशक कैदी है, तेन कैदी में की लाभ उस ईश्वर का, उन्होंने पूजन का, उस राजा पूजन का की लाभ, क्यों कभी तेन आजाद नहीं करा सकता, तू उस पर बोझ नहीं सकता। फिर गुरु साहब की होगा, कहते बेटा तेन एक भेज देंगे हुक्म साहब जी, कहते बेटा उस राजा का एक दास है, राजा तो अपनी धुनी मस्त है, वो हुक्म के जरिए सृष्टि को चला रहा है, उसका दास जो है उस दास के कोल वो चाबियां का गुच्छा है, वो चाबियां केड़िया ने जड़िया उस सृष्टि के सारे खजानिया के हर ताले में लग जाए, उसके भी जो 84 लाख जागे की सारिया कोठरिया भी आ जाए। तो फिर साहब जी दास में कितने लगी है, कहते बेटा वो भी तुम दस दें, उस दास तक तू किसी तरीके पहुंच जा। फिर वो पेश कर रहे हैं साहब संघ जी, नोट करो कि कई रूहां जड़िया ने उस दास तक पहुंच भी चुकिया ने पर फिर भी लाभ नहीं चुक सकती, क्यों? क्योंकि उत्थे दियां उत्थे ही ने, उन्होंने कभी उस दास का उपदेश नहीं मना, उसका हुक्म नहीं मना, कभी उस दास को प्रसन्न करने की कोशिश ही नहीं की। तो कहन लगे बेटा जिसमें तू उस दास को पहुंच जाऊ फिर तू उसको प्रसन्न करना है, क्योंकि वो अपनी कमर बंध से चाबियां का गुस्सा ता ही कटेगा जो तो तेरे से प्रसन्न होगा। तो प्रसन्न किस तरह हो, कहने लगे बेटा जिसमें तू हर पल हर कभी उस दास का ध्यान करेगा ना, उसके कोल जाया करेगा, कुछ ना कुछ गल्ला तेरे सुनने को जरूर मिलेंगे, तू उन्हें गल्ला के विच ही रमना है, उन्हें गल्ला विच ही ध्यान देना है और उन्हें गल्ला के विच अपने आप में ध्यान देना है, जिसमें तू ढालेगा ना उसने उस दास का ध्यान तेरे वाल हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे, उस वेले वो चाबी कटेंगे और तेरे पिंजरे के ताले से लगाएंगे और तेनों आजाद कर दे, तू आवागमन तो मुक्त हो जाएंगे। तो यही उदाहरण जो है रूहानियत की तकसीम किया जाए तो सारे अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं कि वो अजय पुरुष सतपुरुष जो है वह सृष्टि के लिए कम चलाने वास्ते अपने अवतार भेजता है और वह अवतार है जो ने संत सतगुरु जड़े कि इस लोक के उन्होंने रूहों लैन वास्ते आते हैं जिन्हों के तुर करम बन चुके होंगे। तुर करम कोई एक जन्म के शायद ही कोई विरला भागा वाला हो तनाव पाया हो, नहीं तो सदियों तो कई जन्मों तो एक क्रिया चलती है एक तड़प एक आत्मा भी उस परमात्मा मिलने वास्ते, जिसले तड़प उस सीमा तक पहुँच जाती है उस वेले ही वो अजय पुरुष प्रसन्न होकर के उस अवतार में भेजते हैं, इसे रोह लै करके तुम हम आना है। उसी वेले संत सतगुरु इस टिकड़ भी जाते हैं आप कहने की गुरु गोत्र तो वा भी कोई टिकड़ है इस तो वा कोई टिकड़ नहीं है गुरु साहब वो सारे कष्ट चुकते हैं उस रूह में लगाने वास्ते और जिस वे लैन आते हैं उस वेले होर भी बहुत सारिया रूहां ने वो कई तरीके के बीज दे जाते हैं फल दे जाते हैं जोड़े कि अगले जन्मा के उन्होंने फायदा देते हैं असं अगले जन्मा का जिक्र इतने नहीं करना क्योंकि साढ़े कई गुरु ग्राह यही समझ के बैठे ने कि असं अगर गुरु बना लिया है तो चार जन्मा चाहे मंजी के बाद लै जाए सानू लै ही जाए इस परांदे विचों निकल जाए ऐसा ना कोई किसी पासन के भी जुम किया गया है ना कोई ऐसा कोई उपाय या नियम है एक रूह की तड़प है अपने मुकाम के लीन होने वास्ते मिलन वास्ते ये तड़प जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा अभी पैदा करांगे उतनी जल्दी ही साड़ी क्रिया पूरी होगी और उसी वेले साडा तुरकर्म बनेगा और अभी आवागमन से मुक्त होगा इसको यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी पूजा किसकी करनी है अपने संत सतगुरु की करनी है क्योंकि उसकी पूजा नाल ही असं उस मुकाम में उस मंजिल में प्राप्त कर लवेंगे जी सू आवागमन से मुक्त करनी और गुरु अर्जन देव जी ने जो दुख अपनी बाणी भी दिखी थी राज से गीत गीत से गुरपत कर दो उधर को बनते इसका बाहरी अर्थ तो यही है कि राजे तो लैके कीड़ा और कीड़े तो लैके राजा अंदर तक दुख चुकते हुए अपने उधर की पूर्ति इस गठर की पूर्ति पेट की पालना कर रहे हैं असल में गुरु साहब ने हुक्म किया है इसका यह अर्थ नहीं है राज जो किया गया है इस करके किया गया है कि ये जो मनुखा जन्म है ये 84 लाख जामिया के भी सब तो उत्तम है इस करके इसमें राजा किया गया है सृष्टि का सिरमौर क्या है सृष्टि का सिरमौर राजा है और वो है मनुखा जन्म इंसान राज से चीज यानी जो बाकी सारे जामे जितने भी ने कीड़े का सूक्ष्म बैक्टीरिया भी अंदर आ जाते हैं ये सारे निचलिया जोनिया ने 84 लाख के अंदर आ गए उस तो अगे होर के लिए होर सूक्ष्म जोनिया ने कीट से फुरपत यानी कि देवत्या का राजा इंद्र वो भी 84 लाख भ्रमण के विच है 84 लाख जूना के विच है असं उन्होंने पूजन भी लगे हाँ और ये उत्तम भोगी जूना ने साडा उधार किस तरह हो सकता है कर दो जधर को भरते बाहरी अर्थ यही है कि पेट को भरते हैं पर जिसल असं सूक्ष्म जूना वाल देखते हाँ अंदर दियाँ उ अर्थ जो है कष्ट नहीं होता ना पूरा उतरता है इसे यही अर्थ गुरु साहब हुक्म करते हैं कि जन्म मरण का जो दुख है 84 लाख जामिया के अंदर यही दुख चुप चुप के अभी बार बार जम रहे हैं और मर रहे हैं क्यों क्योंकि कृपा निध छोड़ बड़े महाराज जी ने कृपा निध का अर्थ जो है अपनी बाणी के विच ईश्वर परमात्मा को तब्दील किया है अच्छे गुरु साहब ये अर्थ नहीं दे रहे गुरु साहब इसका दूसरा अर्थ दे रहे हैं उसको पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस परमात्मा को अभी देखा नहीं जानिया नहीं उसकी पूजा का की लाभ समय नष्ट करना है तो उसमें इस बाणी के किस तरीके तकसीम अभी कर सकते हैं कृपा निध निध जो है खजाना है कृपा गुरु और उस ईश्वर को देखा नहीं उसका कि जान सकते हैं सतगुरु साढ़े सामने मौजूद है हाजिर नाजिर है असं उस तक पहुँच सकते हैं उसकी प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं उसके को निधि है उसके को खजाना है वो कृपा का दास है आपका देने वाला है इस करके इसे जो अर्थ तकसीम किया है गुरु साहब ने वो सतगुरु तकसीम कर रहे हैं कृपा निज छोड़ अपने सतगुरु की छोड़ के कृपा उसकी पूजा छड़ के आन को पूजे होर चीजा की पूजा होर अवतारा की पूजा होर कर्मकांडा की पूजा ये किसी भी लायक नहीं है आत्मघात करते इसे आत्मघात का बाहरी अर्थ है आत्महत्या करना असं आत्महत्या कर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं किस तरीके नाल असं अपनी इस आत्मा के नाल विश्वासघात कर रहे हैं जिस तरीके नाल कि असं ऐसे कर्म करा करके ऐसी पूजा करा करके असं अपनी 84 का जामा पक्का कर रहे हैं भावे उत्तम जून सानू इंसान भी मिले या देव भी मिले रवांगे 84 लाख जून के अंदर ही फिर असं इस धरती पर आवेंगे फिर जमांगे फिर मिलेंगे ये निश्चित है ਯਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 84 ਲੱਖ ਜਾਮੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਗੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂ, ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਗੰਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਜਨ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਸੋ ਜਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਰ ਭਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 84 ਲੱਖ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲ ਪਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਉਸੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ 84 ਲੱਖ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੁੰਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਮੁਕੱਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਯੋਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ, ਬਿਰਕੁਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਉਪਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਈਏ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸਤਾਂਤ ਔਰ ਹੋਰ ਹੋਏ ਕਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ या निराकरण वास्ते नहीं, पूर्ण वाक्य को समझना है। और कोई भी अगे वग के इसका कोई होर अर्थ कढ़ता है, ये उसकी अपनी मनमत है, गुरमत का इसके नाल कोई भी संबंध नहीं।